Hey, JB. Good morning to everybody. Nasta Zalika. My little Marathi. So I'm going to speak for a little bit this morning.
तो आज सवेरे मैं थोड़ी बात करने वाला हूँ.
And then we'll again do the two periods of meditation that we did yesterday.
और फिर कल जो हमने किए थे उन दो ध्यान के सत्र हम दोबारा करेंगे.
So I want to go a little bit more into how you work in meditation.
तो हम ध्यान में कार्य किस प्रकार से करते हैं इसके ऊपर मैं कुछ और कहना चाहूंगा.
This afternoon I will answer some questions if you have any.
तो आज दोपहर अगर आपके कुछ सवाल हैं तो उन सवालों के मैं जवाब देने वाला हूं.
If you've got any questions about meditation and the things that I've been saying, be good if you could write them down and then I can think about them a bit in advance.
तो अगर आपके ध्यान को लेकर या जो कुछ हम यहाँ पे सीख रहे हैं उसको लेकर कुछ सवाल है तो अच्छा होगा कि आप वो लिख कर दे दे और फिर मैं इसके जवाब दूंगा.
Perhaps you could give them to Bharati and she can translate.
Jutinder is collecting.
Oh, Jutinder is collecting, but Jutinder might need English.
Okay.
Yeah. Anyway, Jutinder will collect and I'll try and deal with those.
तो जो आपके सवाल है वो ज्योतिंदर के पास आपको देने हैं और फिर वो सुभूति के पास आएंगे और वो देखेंगे.
But I imagine that there are some questions that you will have that are fairly common.
तो मैं ऐसी कल्पना कर रहा हूँ कि शायद कुछ सवाल ऐसे आएंगे जो सबके लिए समान हैं.
When you're meditating, a quite common experience, of course, is that you can't keep your mind on the subject of meditation.
तो जैसे कि आप जब ध्यान करते हैं तो ध्यान का हमारा जो विषय रहता है या वस्तु रहती है उस पर हम अपना ध्यान एकाग्र नहीं रख पाते.
Your mind wanders to this and that.
हमारा मन उसे छोड़कर इधर उधर भटकता है.
And your mind cannot enter the state of meditation.
और आपका मन जो है वो ध्यान की अवस्था तक नहीं पहुंच पाता.
So the Buddha described five hindrances to meditation.
तो बुद्ध कहते हैं कि ध्यान में पांच रुकावटें या उसे हम निवरण भी कहते हैं वो आते हैं.
The five nivaranas are the main barriers that you get to concentration.
तो एकाग्रता हासिल करने के लिए ये पांच निवरणा जो है वो आपको रोकते हैं.
So it's important to be able to recognize them and know how to work with them when they arise.
तो ये बहुत जरूरी होता है कि उन्हें हमें पहचानना आना चाहिए और उन्हें कैसे दूर करें ये जानना आना चाहिए.
In the war, in the Second World War, there used to be signs up with pictures of German aeroplanes.
तो द्वितीय विश्व युद्ध के वहां पे बड़े बड़े ऐसे चित्र लगे होते हैं पोस्टर और जर्मन का जो विमान है जर्मन लोगों का उसका उस पे चित्र होता था.
Because then you would know whether that was an enemy plane and you needed to get shelter or a British one.
तो ऐसा था कि उसे देख के आपको पता चल जाएगा कि ये जो विमान जा रहा है वो दुश्मनों का है और हमें किसी सुरक्षित स्थान पे छुपना है.
And the sign said, "Know your enemy."
और उस पे जो लिखा हुआ होता था वहां ऐसा लिखा था कि अपने दुश्मन को जानो.
So you need to know your enemy, the five hindrances.
तो आपके जो दुश्मन है आपको इन पांच निवरणों का ज्ञान होना चाहिए.
You need to be able to identify, yes, this is a hindrance.
तो आपको ये पहचानना आना चाहिए कि हाँ ये निवरण मुझे आ रहा है.
Once you've identified it as a hindrance, you know what to do.
और एक बार जब आप उस निवरण को पहचान लेते हो तो फिर आपको मालूम होता है कि अब क्या करना है.
So there are five principal hindrances to meditation.
तो ध्यान में पांच मुख्य निवरण आते हैं.
The first hindrance is raga.
तो पहली रुकावट या निवरण जो है वो है राग.
That's lobe.
Lobe.
So your mind is looking for something to attached to.
तो आपका मन जो है किसी ऐसी वस्तु को ढूंढता रहता है जिसके साथ आप जुड़े रह सको आसक्त हो जाओ.
Your mind is seeking something that it feels will give satisfaction.
तो आपका मन ऐसी चीज को ढूंढते रहता है जो आपको लगता है कि ये मुझे संतुष्टि दे सकती है.
You know, you're doing the meditation in the morning.
तो आप सवेरे ध्यान करते हो.
And you start to think about breakfast.
और आप नाश्ते के बारे में सोचना शुरू करते हो.
You start to think about pohe.
और आपको पोहे याद आते हैं.
I really don't like pohe, but
मुझे पोहे पसंद नहीं है.
I always had English breakfast, even in India.
तो भारत में भी मैं अपना जो पाश्चिमात्य नाश्ता है वो करता हूँ.
But presumably, you Maharashtrians, you like pohe.
लेकिन शायद आप महाराष्ट्रियन लोगों को पोहे पसंद हो.
So maybe instead of watching your breath, you're thinking about pohe.
तो अपने सांस के ऊपर ध्यान देने के बजाय आप पोहे के बारे में सोचना.
Well, I've given a fairly trivial example, huh?
तो मैंने बहुत ही साधा ऐसा उदाहरण दिया है.
But they're much more complex, much more dangerous objects.
लेकिन बहुत गंभीर ऐसे भी विषय आ सकते हैं.
But you sit there thinking about something that you want.
और आप वहाँ बैठते हैं और जो कुछ आपको चाहिए उसके बारे में आप सोचना शुरू करते हैं.
It can be quite weak.
वो बहुत छोटी सी बात हो सकती
है. Just casually thinking about pohe.
तो जैसे पोहे के बारे में सोचना.
Or it can be very, very strong.
या वो बहुत बड़ी या मजबूत ऐसी चीज हो सकती है.
Really wanting some position perhaps or some object like a new motorbike or something.
तो जैसे आपको कोई पद चाहिए या कोई नई गाड़ी चाहिए ऐसा भी हो सकता है.
Of course it can be connected with sex.
या लैंगिकता से भी उसका संबंध हो सकता है.
So one's mind is taken up with craving.
और अपना एक का मन जो है वो उसकी जगह तृष्णा ले लेती है.
It can be quite difficult to spot craving.
और इस तृष्णा को पहचानना बहुत मुश्किल होता है.
Because when you're thinking about something you want, you have a feeling of pleasure.
तो जो कुछ आपको चाहिए उसके बारे में जब आप सोचना शुरू करते हो तो अपने आप ही खुशी महसूस होती है.
You're sitting there and you're thinking about breakfast.
आप बैठे और आप नाश्ते के बारे में सोच रहे हो.
And you can even taste something, the pohe, in your mouth.
और आपको पोहे का थोड़ा थोड़ा स्वाद भी आना शुरू हो जाता है.
And so you're enjoying yourself.
और आप खुद में बहुत आनंद लेते हो.
Particularly as Ravi makes it.
तो जब रवि खास करके उनको बनाता है.
So your craving is difficult to spot because it's pleasurable.
तो इस प्रकार की तृष्णा को पहचानना बहुत कठिन होता है क्योंकि वो आपको आनंद दे रही है.
Actually, craving is a state of dissatisfaction.
लेकिन वास्तव में तृष्णा जो है वो असंतुष्टि को जन्म देती है.
You're not happy now, you're thinking about a situation in the future where you will be happy.
क्योंकि आप अभी खुश नहीं हो और आप भविष्य के ऐसी एक स्थिति की कल्पना कर रहे हो जो आपको सुख दे सकती है.
And that distracts you from your experience now.
और फिर इस वक्त जो आपका अनुभव है वो आपको उससे दूर ले जाती है.
So we need to recognize this tendency to craving.
तो ये जो तृष्णा करने की हमारी प्रवृत्ति होती है उसको हमें पहचानना आना चाहिए.
Of course, when craving is frustrated, that's when you really feel the pain.
और जब आपकी ये तृष्णा जो है बहुत ही निराश हो जाती है तब आपको दर्द महसूस होता है.
When he or she says no, I won't marry you, then you feel the pain.
तो जब वो आपसे कहता है नहीं मैं आपसे शादी नहीं कर सकता या कर सकती तब आपको दर्द होता है.
It's when craving is thwarted that you feel the pain.
Craving is
thwarted, checked.
जब आपकी तृष्णा को कोई रोक देता है उस वक्त आपको दर्द महसूस होता है.
But when you're in the midst of the craving, you don't notice the pain.
लेकिन जब आप उस तृष्णा के मध्य में होते हैं उस वक्त आपको दर्द नहीं महसूस होता.
So we need to recognize quite clearly what our mind is doing.
तो इसलिए हमारा मन क्या कर रहा है ये हमें बहुत ही स्पष्टता से जानना चाहिए.
And people can become almost mad with craving.
और तृष्णा से तो लोग पागल भी हो सकते हैं.
Well, not just almost, they can become mad from craving.
मतलब पागलपन की हद तक नहीं तो वाकई वो पागल हो सकते हैं.
I've seen people get into a state that is really a madness.
तो मैंने लोगों को ऐसी अवस्था में जाते हुए देखा है कि जिसको आप सही में पागलपन कह सकते हो.
They just become obsessed with what they want, with what they crave.
तो उन्हें क्या चाहिए उन्हें जिस चीज से आसक्ति हो गई है वही उन्हें चाहिए होती है.
I've seen that particularly with drug addicts.
और खासकर जो नशा इत्यादि करते हैं उनके बारे में मैंने ये देखा है.
Craving for the drug means they'll do anything.
और उनको जो नशा चाहिए होता है उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं.
So yes, we need to identify the craving first of all.
तो हमें हमारी इस तृष्णा को पहचानना होता है.
We need to recognize that's the state we're in.
और हमें ये पहचानना चाहिए कि हम इस अवस्था में हैं.
And once we've recognized we're in that state, it's easier to get out of it.
और जब हम ये पहचान लेते हैं कि हम इस अवस्था में हैं, तब उससे बाहर निकलना आसान हो जाता है.
Of course, you need to exercise a certain amount of effort to get out of it.
लेकिन इससे बाहर निकलने के लिए आपको कुछ हद तक प्रयास भी करने पड़ते हैं.
It may be enough just to realize, oh, I'm craving.
कभी-कभी सिर्फ इतना पहचानना भी कि हाँ मुझे आसक्ति हो रही है तृष्णा है.
Then you just drop it.
तो वो चली जाती है.
But it may not be enough.
लेकिन कभी-कभी इतना काफी नहीं होता.
You may need to reflect more on that craving.
और उस तृष्णा पे आपको बहुत ज्यादा चिंतन करने की आवश्यकता होती
है. For instance, you can think, well, look, I'm really looking forward to pohe.
तो आपको ऐसा सोचना पड़ता है कि हाँ मैं वास्तव में पोहे के बारे में सोच रहा हूँ.
पोहे is like X. You can fill in whatever you want to instead of पोहे.
तो पोहे हम उदाहरण ले रहे हैं, उसकी जगह आप अपनी कोई भी चीज ले सकते हैं.
You can fill in your own favorite craving.
तो आपकी अपनी जो पसंदीदा तृष्णा या आसक्ति है उसको आप वहां रख सकते हैं.
But yes, you're looking forward to पोहे.
और आप हाँ आप चाहते हैं कि आपको पोहे मिले.
But then you think, well, so you've had पोहे.
तो फिर आप सोचते हैं कि हाँ पोहे अभी मिल गए.
What then?
उसके बाद क्या?
What comes next?
उसके बाद क्या आएगा?
Because when you're in the midst of craving, it seems as if once you've got that thing, nirvana.
तो क्योंकि जब आप उस तृष्णा के मध्य में होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि मानो वो मिल गया, यानी निर्वाण मिल गया.
But once you've had whatever it is you're craving, well then there's a new space.
लेकिन जिस चीज की आपको तृष्णा है वो एक बार जब आपको मिल जाती है तो उसकी जगह कोई नई चीज ले लेती है.
So you haven't solved anything by that craving.
तो फिर ये तृष्णा के साथ आसक्त होके आपका कुछ भी आपको कुछ भी हासिल नहीं हुआ है.
So you can use reason with yourself in that way.
तो फिर आप उसके ऊपर सोच सकते हो और उसको कारण दे सकते हो.
Of course, if what you're craving is something not skillful, well, you can reflect on the consequences of having it.
तो अगर आप जिस चीज की आपको तृष्णा या आसक्ति है वो अगर कुशल नहीं है तो आप इस बात का चिंतन कर सकते हो कि वो मिलने के बाद उसका आप पे क्या परिणाम होगा.
If you eat too much pohe, you just feel very heavy and dull.
तो अगर बहुत ज्यादा पोहे खा लेते हो तो आपको बहुत एक जड़पना महसूस होता है.
And when you come to the lecture in the morning, you can't listen because you're half asleep.
और फिर जब आप सवेरे लेक्चर सुनने के लिए यहाँ पे आते हो आप नहीं सुन पाते हो क्योंकि आप आधी नींद में हो.
So you reflect on the consequences of craving.
तो इसलिए उस तृष्णा का परिणाम क्या होगा इसके ऊपर आप चिंतन करते हो.
And you can often sort of talk yourself out of it.
और आप अपने आप को उस तृष्णा से बाहर निकलने के लिए बातचीत करते हो.
You say, well, that's okay. It's not bad to want that.
तो आप कह सकते हो कि हाँ ठीक है इसे चाहना कोई बुरी बात नहीं है.
But why think of it now?
लेकिन उसके बारे में मैं अभी क्यों सोचूं?
When the pohe is in front of you, well, you can enjoy it then.
और जब वो पोहे मेरे सामने आ जाएंगे तब मैं उसका आनंद उठाऊंगा.
But you're wasting your time now.
लेकिन आप अभी अपना समय नष्ट कर रहे हो.
So in this way you can sort of reason with yourself to try to persuade yourself this is not the moment.
और इस तरह से फिर आप अपने आप को समझा सकते हो कि ये अभी मेरे लिए ये चीज ठीक नहीं है और अभी मैं इसमें से बाहर निकलूंगा.
You may be able, you may find that in the end you're just forced to sort of stop it.
आपको ऐसा भी कभी कभी पता चलेगा कि कभी कभी आपको उसे जबरदस्ती रोकना पड़ता है.
You just push it out of your mind.
और एकदम से उसे अपने मन से धक्का देके बाहर निकालना पड़ता है.
In Buddhist tradition, there are traditional methods of cultivating the opposite.
तो बौद्ध परंपरा में मतलब परंपरागत तरीके हैं कि उसके विरुद्ध कुछ तो आप निर्माण करते हो.
You know, when you're thinking about delicious food, well, you need to remember what that's going to happen to that food.
तो जैसे आप किसी बहुत ही स्वादिष्ट भोजन की कल्पना करते हो तो आपको ये भी सोचना पड़ता है कि बाद में इस अन्न के साथ क्या होने वाला है.
You find it very delicious when you think about it in advance.
तो जब पहले ही हम उसके बारे में सोचते हैं तो हमें वो बहुत स्वादिष्ट लगता है.
But what's that going to be like when it passes through your body?
लेकिन जब आप वो शरीर के अंदर चल जाता है और जब मल में उसका रूपांतर होता है तो
then,
वो कैसा होता है?
Then you think of it as disgusting.
अब तब तो आप उसको खाना भी नहीं चाहोगे, घृणा होगी आपको.
So you try to get things more in proportion.
तो आप जितनी आवश्यकता है उतना लीजिए.
Or you think of some film star.
या किसी फिल्म स्टार के बारे में सोचते हैं.
कैटरीना कैफ.
जैसे कैटरीना कैफ.
Or शाहरुख खान.
शाहरुख खान.
I don't know many film stars, so that's all I can say.
तो मुझे ज्यादा फिल्म स्टार मालूम नहीं है, इतने ही मालूम है.
And you may find yourself sort of a little bit in love with them.
और आप पाओगे कि आप थोड़े हद तक उनसे प्यार में हो.
It's amazing, people do seem to fall in love with these film stars.
और ये बहुत आश्चर्यजनक बात है कि इन फिल्म स्टार से लोगों को प्यार हो जाता है.
But if you reflect on it, it's quite artificial.
लेकिन जब आप उसके बारे में सोचते हो तो ये बहुत ही आर्टिफिशियल है.
They're not really like that.
वो उसके जैसे नहीं होते.
It's all makeup and it's all padding.
तो वो सब उनका मेकअप होता है, उनके कपड़े वगैरह होते हैं.
And well, you should see Katrina Kaif when she gets up in the morning.
तो जब कैटरीना कैफ सवेरे नींद से जागती है उस वक्त आपने उसे देखना
चाहिए. Of course, I haven't seen her, but just to be quite clear.
तो मैं पहले ही बता देता हूँ, मैंने उसे नहीं देखा है.
But you know, before the makeup goes on, what does she look like?
तो जब वो मेकअप नहीं पहनती तो उसे पहले वो कैसे दिखती है?
And probably, well, there are probably times when she looks quite disgusting.
और ऐसे बहुत से समय होंगे जब वो बहुत ही बदसूरत दिखती होगी.
She has to go to the bathroom sometimes.
उसे भी कभी-कभी बाथरूम जाना होता है.
But this you make yourself look at the reality of the situation.
तो आप अपने आप को उस चीज की वास्तविकता देखने में लगाते हो.
Otherwise, what we're doing is we're running a Bollywood movie in our minds.
नहीं तो होता क्या है, जैसे एक बॉलीवुड की कोई फिल्म हमारे दिमाग में हम चलाते रहते हैं.
He or she, we make into something quite ideal.
और वो या वो जो भी है उन्हें हम एक अपना आदर्श बना लेते हैं.
But they're not really like that.
लेकिन वो वास्तव में वैसे नहीं होते.
So we deliberately try to see the full picture.
तो इसलिए हम जानबूझ के पूरा जो चित्र है वो देखने का प्रयास करते हैं.
And of course, in the case of another human being, that enables us to have a genuine human relationship with them.
और जब दूसरे व्यक्ति की बात आती है तो उनसे फिर हम एक सच्चा संबंध प्रस्तापित कर सकते हैं.
So yes, when lobe arises, you work to get rid of it.
तो जब लोभ आपके अंदर निर्माण होता है तो उसे छुटकारा पाने के लिए आप कार्य कीजिए.
Every time you enter into that lobe, you make it stronger.
तो जब भी आप उस लोभ के अंदर जाते हो आप उसको और मजबूत बनाते हो.
So you need to deliberately undo it.
तो आपको फिर जबरदस्ती उसे वापस छुड़ाना होता है, मतलब नष्ट करना होता है.
Then of course there's द्वेष.
और फिर उसके बाद है द्वेष.
द्वेष is a bit more obvious.
और द्वेष होता ही है, मतलब.
It's painful to feel dislike and hatred.
तो किसे मतलब नफरत को महसूस करना बहुत दर्द देता है.
So you're more likely to notice that your state of mind is not a good one.
तो ये जानना बहुत आसान होता है कि हमारी मानसिक अवस्था अच्छी नहीं है.
And again, you deliberately work to get rid of that hatred.
और फिर इस द्वेष से मुक्ति पाने के लिए आप जानबूझकर कार्य करते हैं.
Of course, you may be able to just say, "There's hatred in my mind. Drop it."
तो आपको ऐसा भी कहना आना चाहिए कि हाँ, मेरे मन में द्वेष है, चलो मैं इसे छोड़ देता हूँ.
You may not. It may be too strong.
तो शायद आप ना कर पाओ अगर वो बहुत ज्यादा मजबूत हो.
You may need to use maitri, deliberately cultivate maitri to get rid of it.
और फिर द्वेष से छुटकारा पाने के लिए आपको जानबूझकर मैत्री विकसित करनी होती है.
So you cultivate the opposite of that hatred.
तो द्वेष की जो विरुद्ध भावना है वो आप विकसित करते हैं.
That may not work. You may not be able to do that.
कभी कभी शायद आप ऐसा नहीं कर पाओ.
Then you may need to consider the consequences of your hatred.
तो फिर इस द्वेष का मेरे ऊपर क्या परिणाम होगा, ये आपको चिंतन में लेना होता है.
If I act on this, what will happen?
तो अगर मैं ऐसा द्वेष से कार्य करता रहूंगा तो क्या होगा?
Will that be good for me? Will it be good for others?
तो ये मेरे लिए अच्छा होगा क्या? ये औरों के लिए अच्छा होगा क्या?
And almost always, when you think about it, acting on hatred is not going to have a good result.
और जब भी आप इसके ऊपर सोचो आप यही पाओगे कि द्वेष से कृति करना इससे कोई मदद नहीं मिलती.
You're not going to be able to resolve anything.
उससे आपकी कोई समस्या का समाधान नहीं होता.
You may harm somebody else and that may come back on you.
आप शायद किसी को कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं और वो आपके ऊपर भी बाद में आ सकता है.
Even if somebody else is upset and angry with you, you're getting angry with them is not a solution.
और जब कोई कभी आपसे नाराज होता है, गुस्सा करता है, तो आपने नाराज होना या गुस्सा होना उससे कुछ मदद नहीं होती.
The Buddha says, hatred does not cease by hatred.
तो बुद्धा कहते हैं कि द्वेष द्वेष से शांत नहीं होता है.
It just goes on and on, hatred for hatred for hatred.
और वो ऐसे ही लगातार बढ़ता जाता है, द्वेष उसके लिए द्वेष उसके लिए द्वेष.
So we deliberately work to convince ourselves that hatred is not beneficial to us.
और फिर हमें जानबूझकर हमें ये समझाना पड़ता है कि द्वेष हमारे लिए मददगार नहीं है.
Sometimes we may just have to sit with the hatred.
कभी कभी उस द्वेष को लेके सिर्फ हमें बैठ जाना पड़ता है.
It's the same with craving too.
और यही तृष्णा के बारे में भी है.
The feelings may be so strong you can't get rid of them.
तो वो भावनाएं आपके अंदर इतनी तीव्र हो सकती है कि आप उसे छुटकारा नहीं पा सकते.
But what you can do is sit holding them.
तो उस वक्त आप क्या कर सकते हैं कि उनको पकड़े हुए आप बैठ जाओ.
Not letting them grow.
उन्हें बढ़ने नहीं देना है.
But sitting until they become sufficiently calm for you to be able to deal with them.
और उनको पकड़ के हमें तब तक बैठना है जब तक वो शांत नहीं हो जाती और जब तक हम उनपे कार्य कर नहीं पाते.
Of course, I'm only saying a few words about each of these. Really, each is a whole retreat.
तो मैं भले ही बहुत थोड़े शब्दों में इनके बारे में आपको बता रहा हूँ, लेकिन हर एक के लिए हमें पूरे एक शिविर की आवश्यकता है.
I hope you're getting some idea of what you need to be doing in the meditation.
लेकिन आशा करता हूँ कि आपको थोड़ी कल्पना आ रही है कि ध्यान में आपको क्या करना है.
You deliberately work to counteract these mental states.
तो ये जो आपकी मानसिक अवस्थाएं हैं, उसके विरुद्ध आप जानबूझकर विरुद्ध भाव विकसित करने का प्रयास करते हैं.
So that's two hindrances.
तो ये दो निवरण हैं.
Then there's a third hindrance, which is in Pali tinamiddha.
और फिर तीसरा निवरण है जिसको पाली में थीन मिद्ध कहते हैं.
संस्कृत स्थान मिद्ध.
और संस्कृत में स्थान मिद्ध कहते हैं.
And this is usually what's it usually translated as?
आलस. आलस.
Sloth and torpor. Sloth. Thank you. Yeah. Usually translated in English as sloth and torpor.
और अंग्रेजी में उसे स्लोथ एंड टॉर्पर कहते हैं.
सो रियली व्हाट दिस मींस दैट देयर टू डिफरेंट मेंटल स्टेट्स व्हिच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट.
तो ये दो ऐसी मानसिक अवस्थाएं जिनका एक समान हमारे ऊपर परिणाम होता है.
यू हैव नो एनर्जी.
आपके पास बिल्कुल ऊर्जा नहीं रहती.
यू फील क्वाइट स्लीपी क्वाइट डल.
आपको बहुत नींद आती है. आपको बहुत बोझल महसूस होता है.
एंड यू मे इवन गो टू स्लीप.
और शायद आप को नींद आ भी जाती है.
It's quite possible to be sitting in meditation, your back straight, your eyes closed, fast asleep.
और ऐसा हो सकता है ध्यान में आप बैठे हो, आपकी आंख बंद है, आपकी पीठ सीधी और थोड़ी देर में आप नींद में चले गए.
You have to be careful not to fall over, but you can do it.
तो आपको ध्यान देना पड़ता है कि आप सामने वाले के ऊपर ना गिरो.
So yes, sometimes you feel like that.
तो कभी कभी आपको ऐसा महसूस होता है.
Now sometimes that's because you're tired.
कभी कभी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप थके हुए होते हो.
Or you're ill.
या शायद आप बीमार हो.
You just don't have enough energy.
और ध्यान करने के लिए पर्याप्त शक्ति आपके पास नहीं है.
And it's a natural physical state of tiredness.
और थका हुआ होना ये हमारी एक शारीरिक अवस्था है, नैसर्गिक है.
Well, obviously what you need to do then is sleep.
और उस वक्त आपने क्या करना चाहिए कि सो जाना चाहिए.
And well, you may not be able to do it immediately.
शायद आप तुरंत ऐसा नहीं कर पाओ.
But it may be that you just lack sleep or lack energy because of illness.
क्योंकि ऐसा हो सकता है कि शायद बीमारी की वजह से शायद आपकी नींद पूरी नहीं हुई हो.
Or you may have been doing a lot of vigorous physical exercise, so naturally your mind is a bit dull.
या शायद आप बहुत ही कठिन शारीरिक श्रम वाला कार्य कर रहे हैं और आपका शरीर थका हुआ महसूस कर रहा
है. So you need to notice, well, what's going on.
तो आपको देखना पड़ता है कि क्या चल रहा है.
Is it that I've not had enough sleep?
तो क्या ऐसा तो नहीं है कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है.
Is it that I'm a bit ill?
या ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ बीमार हूँ.
I'm just tired.
या मैं थका हुआ हूँ.
Sometimes I'm not sure whether I should tell you this, but sometimes you can just slightly go to sleep in meditation.
तो मुझे नहीं पता मैंने आपको बताना चाहिए या नहीं, लेकिन कभी कभी ध्यान में आप सो सकते हो.
I do this sometimes if I'm tired.
तो कभी कभी अगर मैं थका हुआ हूँ.
I deliberately let myself go to sleep a little bit.
तो मैं जानबूझ के अपना मतलब नींद आने देता हूँ.
I get into trouble for this.
तो शायद मुश्किल हो सकती है अभी आपको बता के.
You have to make sure you don't snore when you do this.
और आपको ये ध्यान देना पड़ता है.
Oh, there you go. Sometimes that happens in a meditation session. You hear somebody snoring.
तो कभी-कभी ध्यान का सत्र चलता है तो आप सुन सकते हैं कुछ लोग का रट्टे भरते हैं.
But sometimes you know that you just don't have enough energy to meditate.
लेकिन कभी-कभी आपको पता होता है कि ध्यान करने के लिए उतनी शक्ति आपके पास नहीं है.
And you can have a very deep rest.
और आप एक गहरा आराम आप तब ले सकते हैं.
Maybe just for 2 minutes.
शायद 2 मिनट के लिए.
And then you've got the energy. I find this works for me sometimes.
और फिर वापस आपको शक्ति मिलती है.
Sometimes the best thing to do may be just to go and lie down and sleep.
तो कभी-कभी अच्छा होता है कि उठ के चले जाए और सो जाए.
But often that feeling of dullness comes about not because we're genuinely tired.
लेकिन बहुत बार इस तरह से बोझल महसूस होना इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम थके हुए हैं.
It becomes because in one way or another our energy is blocked.
तो वो इसलिए होता है क्योंकि एक तरीके से या दूसरे तरीके से हमारी ऊर्जा जो है वो कहीं पर अटकी हुई होती है.
For instance, if you are in mental conflict, you may not have enough energy.
तो अगर आपके मन में कुछ संघर्ष चल रहा है तो शायद उतनी शक्ति आपके पास नहीं होती.
Or if you're a bit depressed, you can feel quite dull.
तो अगर आप निराश हो तो उस वक्त भी आप बोझल महसूस कर सकते हैं.
If you've had a lot of suffering, a lot of pain, even a lot of bad things happen to you, well, you will be in a bit of a state of shock.
तो अगर आप दुख में हो, आपके साथ बहुत बुरा ऐसा कुछ हुआ है, आप शॉक में हो, तभी भी ऐसा हो सकता है.
You know, somebody dies close to you, or something like that. Well, for a while, your energies may be sort of, you just don't know what to do. Your energies are blocked.
तो जैसे आपके घर पे किसी के करीबी मृत्यु हुई है और उस वक्त आपको नहीं पता होता है कि मेरी शक्ति का क्या करूं.
You can just function, but you haven't got much energy.
तो आप ऐसे कार्य करते हो जैसे आपके पास उतनी ऊर्जा नहीं है.
And sometimes for some people, this becomes habitual.
लेकिन कभी कभी कुछ लोगों के लिए ये आदत बन जाती है.
If a lot has happened to you that is very bad and very painful, well, naturally it's going to take some time for your mind to recover.
तो अगर आपके साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो आपके लिए बहुत दर्दनाक है तो आपको पूर्व स्थिति में आने के लिए कुछ अवकाश की आवश्यकता होती है.
And you need to be tolerant of yourself.
और उस वक्त आपको खुद के प्रति सहनशील होना पड़ता है.
It will take time.
उसके लिए वक्त लगेगा.
But it can become a habitual mental state.
लेकिन फिर ये आपकी आदतन मानसिक अवस्था बन सकती है.
Some people seem to be half asleep most of the time.
कभी कभी कुछ लोग हमेशा ही आधे नींद में नजर आते हैं.
They're sort of walking around with their eyes open, but they're asleep.
तो कभी कभी अपनी आंखें खुली रख के वो चलते हैं लेकिन वो आधे नींद में होते हैं.
Yeah, they seem to be functioning like a normal human being, but the load shedding is going on.
तो ऐसा लगता है कि एक आम इंसान की तरह ही उनका सब काम चल रहा है लेकिन थोड़ा मतलब उनकी बैटरी लो रहती
है. So yes, you can be meditating and it's just as if the MSEB, is it Maharashtra?
MSEB.
MSEB is not delivering enough power.
तो आप ऐसा कार्य करते हैं जैसे आपको एमएससीबी से जितना पावर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो नहीं मिल रही है.
It's just enough to keep the light on, but not much more than that.
तो सिर्फ लाइट चालू रहे इसके लिए वो पर्याप्त है, लेकिन जितनी चाहिए उतनी नहीं है.
Well, clearly, if there's some external reason, like a lot of suffering, well, you just have to wait.
तो अगर ऐसा कुछ कार्य कि बाहर से बहुत कुछ दुख आपने सहा है, तो आपको वक्त की आवश्यकता.
But if it's a habitual mental state, you need to work against it.
लेकिन ये अगर आपकी आदतन मानसिक अवस्था है, तो आपको इसे बाहर निकलने के लिए कार्य करना पड़ता
है. First of all, you need to recognize the state you're in.
तो जिस अवस्था में आप हो, उसको आपको पहचानना पड़ता है.
This is important for all the hindrances.
और फिर ये सब रुकावटों के लिए आवश्यकता है.
You need to recognize that they're there.
आपको पहचानना पड़ता है कि वो यहाँ है.
And then, will you try to stimulate yourself?
और फिर अपने आप को उत्तेजित करने के आप प्रयास करते हो.
It's recommended, for instance, by the Buddha, that you visualize light.
तो बुद्ध का ऐसा एक सुझाव है कि आप प्रकाश की कल्पना करो.
You imagine yourself surrounded by light.
आप ऐसी कल्पना करो कि आपको हर तरफ से प्रकाश ने घेर रखा
है. And that brightens your mind.
और उससे आपका मन जो है वो तेजल हो जाता है.
And you try to see what the underlying causes are.
और आप ढूंढने की कोशिश करो कि इस बोझलता की वजह क्या है.
Is it some conflict?
क्या किसी संघर्ष की वजह से है?
Be aware of that conflict and put it on one side.
तो उस संघर्ष के बारे में जागृत हो जाओ और उसे एक बाजू में रख दो.
But yes, you need to be conscious that you're in this dull state and work to get out of it.
लेकिन आप इस बारे में जागृति रख सकते हो कि मैं इस बोझल अवस्था में हूँ और मुझे इससे बाहर निकलना है.
One thing that has a big influence in this way is lack of exercise.
तो एक इसकी ये भी वजह है कि आप पर्याप्त व्यायाम नहीं करते.
And over eating.
और ज्यादा खाना खाना.
They have a strong dulling effect on the mind.
तो इसका परिणाम ऐसा होता है कि हमारा मन बहुत बोझल हो जाता है.
And I think that modern life doesn't encourage us to exercise ourselves.
और हमारा जो आधुनिक जीवन है उसमें हमको व्यायाम करने की इतनी प्रेरणा नहीं मिलती.
We spend a lot of time just sitting down.
हम सिर्फ ऐसे ही बैठे हुए बहुत सारा हमारा वक्त बिताते हैं.
So the energies are not moving, they're not alive.
तो हमारी जो ऊर्जाएं हैं वो जीवंत नहीं है, वो इधर उधर जा नहीं रही है.
It's as if all our energy is in our heads when we're office workers and so on.
तो ऐसा है जैसे सारी हमारी जो ऊर्जा है सिर्फ हमारे सिर में ही है, जहाँ पे हमारा ऑफिस में हमारा काम होता है.
I think that anybody who wants to seriously engage in meditation needs to look to their general physical health.
तो मैं कहूंगा कि वो सभी लोग जिनका ध्यान में कुछ ध्यान करना जो चाहते हैं, तो मेरा सुझाव है कि वो व्यायाम की ओर भी या खुद के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान दें.
That's why I do qigong.
और इसीलिए मैं चिकुंग करता हूँ.
You need to be careful with what you eat.
और आप क्या खाते हो इसके साथ भी आपको सावधानी रखनी.
You need to get out in the fresh air.
आपको खुली हवा में बाहर निकलना होता
है. Not very easy in Indian cities these days.
और भारतीय शहरों में अब ये उतना आसान नहीं है.
Plenty of air, but it's not very fresh.
तो बहुत सारी हवा तो है पर ताजी नहीं है.
Your general physical state has a strong effect on the quality of your awareness.
तो जो आपकी शारीरिक अवस्था है उसका आपके mental state.
Yeah.
तो उसका आपके मानसिक अवस्था के ऊपर परिणाम पड़ता है.
So, another hindrance.
तो ये और एक निवरण था.
उदच्च कुकुच्च.
उदच्च
कुकुच्च इन पाली.
पाली में उदच्च कुकुच्च.
It sounds like some sort of dance, doesn't it? उदच्च कुकुच्च.
सुन के ऐसा लगता है कि कोई नृत्य है.
But it means restlessness and worry.
लेकिन इसका मतलब होता है कि अस्थिरता और चिंता.
So it's a state in which there's a lot of energy.
तो ये एक ऐसी अवस्था है कि जहाँ ऊर्जा तो बहुत होती है.
But it's not at all balanced.
लेकिन उसमें कोई समतोल पना नहीं है.
It's going all over the place.
और वो हर जगह कहीं भी बह रही है.
It's the sort of thing that you see when people are talking a lot.
तो ये तब नजर आता है आपको जब लोग बहुत बात कर रहे होते हैं.
They're just talking about this, talking about that. There's no central theme.
तो कोई ऐसा वहाँ पे एक प्रमुख मुद्दा नहीं होता है, वो इसके बारे में से बात करते रहते हैं.
So that's going on in our own minds.
तो ये सिर्फ हमारे ही मन में चलते रहता है.
We may be very excited about something that we're looking forward to.
तो जो चीज कुछ आगे होने वाली है उसके लिए हम बहुत उत्तेजित हुए होते हैं.
Very unbalanced, disturbed state.
तो बहुत असंतुलन वहाँ पे होता है, बिखराव होता है.
And this can be even quite a pleasant state.
लेकिन इसमें भी आनंद आ सकता है.
You know, sometimes children they get overexcited and you have to calm them down.
तो जैसे बच्चे कभी कभी बहुत उत्तेजित हो जाते हैं और आपको उनको शांत करना पड़ता है.
You can even make yourself sick with excitement.
तो इस उत्तेजना से कभी कभी आप खुद को बीमार भी कर सकते हो.
So we need to calm ourselves down.
तो इसलिए हमें अपने आप को शांत करना पड़ता है.
Usually underneath that sort of excitement is low.
आमतौर पे इस तरह की उत्तेजना के नीचे लोभ होता है.
Because we can see, we can get what we want.
क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो हमें चाहिए उसे हम हासिल कर सकते हैं.
So our mind goes out of control.
तो इसलिए हमारा मन असंतुलित हो जाता है.
We need to settle down, come back.
तो हमें वापस आना पड़ता है, शांत होना पड़ता है.
It's interesting in the meditation manuals, what one of the things they recommend is focusing on the lower part of your body.
तो ध्यान की जो पुस्तक है उसमें ऐसा सुझाव दिया जाता है कि आपके शरीर का जो निचला हिस्सा है उस पर अपना ध्यान लाइए.
So you feel as if you're very, very firmly based on the ground.
तो फिर आपको ऐसा अनुभव आता है कि आप बहुत पक्की तरह से जमीन के साथ जुड़े हुए हो.
You know, in Qigong, I've been getting you to feel the weight and the tension going down into the bottom part of your body.
तो आपको याद होगा कि Qigong में मैं आपको ऐसा बताता हूँ कि आपका शरीर का जो तनाव है वो आपके शरीर के निचले हिस्से में जाकर बाहर निकल रहा है.
So it's like that. You're sitting there, but you're mainly aware of your contact with the ground and your legs on the ground.
तो ऐसा होता है कि आप वहाँ बैठे होते हैं, लेकिन आप इस बारे में जागरूक होते हैं कि आपका जमीन के साथ संपर्क है, आपके पैर जमीन के साथ जुड़े हुए हैं.
And yes, you try to weigh yourself down, as it were.
और आप अपना पूरा वजन जो है वो नीचे डालने की कोशिश करते हैं.
All the energy has gone up into your brain.
और फिर सारी ऊर्जा जो है वो आपके दिमाग में ऊपर चली गई.
So you let it sink down.
और फिर इसलिए वो आप उस ऊर्जा को नीचे उतरने देते हो.
And with restlessness, it's usually enough to recognize what's going on.
और अस्थिरता के साथ इतना ही करना पर्याप्त होता है कि आप पहचानिए कि क्या चल रहा है.
There's a state that's very close to that, which is kukruccha, anxiety.
और इसी के बहुत ही करीब एक अवस्था है कुकुच्च यानी चिंता.
Because anxiety can be very, very mentally active.
क्योंकि चिंता जो है मानसिक स्तर पे बहुत सक्रिय हो सकती है.
And it's the feeling that there's something wrong.
और ऐसा हमें महसूस होता है कि कुछ तो गलत है.
Something that could go wrong.
या कुछ तो गलत हो सकता है.
The Sanskrit is kaukrutya.
और संस्कृत में कौकृत्य कहते हैं.
That means wrong done.
और उसका मतलब होता है कि गलती हो गई, की है.
So it's that background sense that there's something going wrong.
तो अपने अंदर ऐसे चलते रहता है कि कुछ तो गलत हो गया है.
It can be a sense that you've done something wrong.
तो आपको एक एहसास होता है कि आपके हाथ से कुछ गलत हुआ है.
In which case, well, it's a reasonable response, huh?
और एक तरह से देखा जाए तो ये एक मतलब प्रामाणिक प्रतिसाद है.
And if you've done something wrong, well, you need to feel remorse for it.
क्योंकि आपने अगर कुछ गलत किया है तो वो उसके लिए पश्चाताप का एहसास आपको होना चाहिए.
If you've harmed somebody, then well, of course you regret that.
अगर आपने किसी को चोट पहुंचाई है तो उसका आपको पछतावा होना चाहिए.
But often the anxiety is irrational.
लेकिन कभी कभी ये चिंता बेवजह होती है.
The have I locked the door feeling.
तो जैसे क्या मैंने दरवाजा बंद कर दिया है क्या, ऐसे टाइप की चिंता.
Did I turn the gas off?
क्या मैंने गैस बंद कर दिया क्या?
It's that sort of sense that something's wrong. And,
तो ऐसा बेवजह कि कुछ तो छूट गया है, गलत हो गया है.
And you may even remember clearly locking the door.
आपको बहुत अच्छे से याद होता है कि आपने दरवाजा बंद किया है.
But you may think, well, no, did I really lock it?
लेकिन फिर भी आप सोचते हैं क्या सच में बंद कर दिया क्या?
So it's that sort of anxiety about functioning.
तो अपना जो कृति करने का तरीका है उसके बारे में इस तरीके की चिंता होना.
It's very easy to get into this state if you've got a lot of responsibility and many things to do.
अगर आपके ऊपर बहुत सारी चीजें करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तो ऐसी अवस्था आना स्वाभाविक है.
And you really need to organize your mind so that you make sure that you do what you've got to do and forget it.
तो फिर आपको अपने मन को एक तरह से प्रशिक्षित करना होता है कि जो करना है वो करना है और फिर जो नहीं करना है उसे छोड़ देना.
If you carry everything in your mind, you're always going to be anxious.
क्योंकि अगर हर चीज आप अपने दिमाग में लेके चलोगे तो आप हमेशा चिंतित रहोगे.
But if you make those lists of priority and second priority and so forth that you're taught in management schools.
तो जैसे मैनेजमेंट स्कूल में हमको पढ़ाते हैं कि लिस्ट बनाओ क्या करना है, कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है.
That's a very sensible actually.
तो इससे काफी मदद होती है.
Because they help you to organize your mind.
क्योंकि आपके मन को भी एक क्रम देने के लिए उसकी मदद होती है.
But if you don't do that, you're probably going to go around with this kaukrutya feeling all the time.
लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये कौकृत्य का चिंता की जो फीलिंग है हमेशा आपके साथ चलते रहती है.
And when you're meditating, you're constantly thinking, did I lock the door? Did I turn the gas off? Did I do this? Did I do that?
तो जब फिर आप ध्यान करने बैठते हो तो फिर आपके मन में आता है कि दरवाजा मैंने बंद कर दिया क्या, गैस बंद कर दिया क्या, ये कर लिया क्या, वो कर लिया क्या.
And that sort of mental state is endless.
और इस तरह की मानसिक अवस्थाओं का कोई अंत नहीं होता.
So you need to catch yourself.
तो इसलिए आपको खुद को पकड़ना होता है.
If you've done something wrong, well then feel the regret.
तो अगर आपने वाकई कुछ गलत किया है तो उसका पछतावे का आप एहसास लो.
Do what needs to be done to clear it up.
और उसे ठीक करने के लिए जो करने की आवश्यकता है वो करो.
Make sure you don't do it again.
और इस बात की तसल्ली कीजिए कि ये दोबारा आपसे ना हो.
Then leave it behind.
और फिर उसे छोड़ दीजिए.
If it's more to do with functioning, well then you need to make sure that you organize your work, your life more efficiently.
और अगर कुछ कार्य करने से इसका संबंध है तो आप ये तसल्ली कर लीजिए कि आपके कार्यों को आपने अच्छे से सुनियोजित ढंग से क्रम दे दिया.
It's not necessary to be anxious to carry responsibility.
तो जिम्मेदारियां उठाने के लिए चिंता का होना जरूरी नहीं है.
The most effective people are people who are not anxious.
और ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति वो होते हैं जो चिंतित नहीं होते.
So you need to think about if this is a habitual mental state, where does it come from?
तो अगर ये आपकी आदतन मानसिक अवस्था है तो आप सोचिए कि ये कहां से निर्माण हुई है.
Sometimes we learn it from our early experience in childhood.
तो कभी कभी हमारे जो बचपन के कुछ अनुभव होते हैं उसमें से हम सीखते हैं.
But we can stop it, we can get out of it.
लेकिन ऐसी चीजों से हम बाहर निकल सकते हैं.
By being mindful, by being intelligent in your use of time, you can get out of it.
तो अपने समय के सुनियोजन के साथ और जागृति के साथ आप इसमें से बाहर निकल सकते हैं.
One more hindrance.
और एक निवरण है.
You can take more or you're beginning to feel tinamidha, sloth and torpor.
तो आप और सुन सकते हैं या आपको नींद आ रही है?
One more. Okay. Well, the last one is vichikitsa.
तो लास्ट है विचिकित्सा.
Antim, yes, I was going to tell you the Hindi. Which is doubt and indecision.
तो जो है शंका कुशंका.
Somebody was asking me about doubt and indecision, yeah. Well, it's this state where you're habitually unable to make up your mind and commit yourself.
तो जहाँ पे आदतन आपको ऐसी आदत होती है कि आप किसी चीज का निर्णय नहीं ले सकते और उस चीज को आप प्रतिज्ञाबद्ध नहीं हो सकते.
Reasonable doubt is okay.
तो जो योग्य शंका है वो ठीक है.
It's reasonable to doubt what you don't know.
तो जो आपको नहीं पता उसके बारे में शंका उपस्थित करना योग्य है.
It's reasonable to doubt whether the train will be on time.
तो इस बात की शंका निर्माण करना कि क्या गाड़ी समय पे आएगी या नहीं योग्य है.
It's reasonable to doubt things that are open to doubt.
तो जिस चीज के बारे में शंका लेनी चाहिए उसके बारे में शंका होना आवश्यक है.
And in fact, in one sense, Buddhism encourages doubt.
और एक तरह से बौद्ध धर्म आपको शंका उपस्थित करने के लिए प्रेरणा देता है.
It even asks us to, in a sense, be doubtful about the Dhamma.
वो तो हमें ये भी कहता है कि आप धम्म पर भी शंका उपस्थित करो.
The Buddha said, "Do not accept my words merely because I say them."
तो बुद्ध कहते हैं सिर्फ मैं कहता हूँ इसलिए मेरे शब्द सही हैं ऐसा आप मत मानो.
He said, "Test my words." As the goldsmith tests gold in the fire.
तो जैसे कोई सुनार सोने को आग में तपाकर जांचता है, वैसे आप मेरे शब्दों की जांच करो.
Apparently, goldsmiths would put a little bit of gold in the fire and see what color the flame was.
तो जैसे सुनार क्या करता है, सोने का कोई टुकड़ा लेता है, आग में उसको तपा के देखता है कि वो कौन से रंग का हो रहा है.
But yes, so the Buddha is saying, well. Don't start from a position of blind faith.
तो बुद्ध कहते हैं पूरी तरह से अंधश्रद्धा के साथ शुरुआत मत करो.
Blind faith has done so much damage in this world.
क्योंकि अंधश्रद्धा ने पहले इस दुनिया को बहुत नुकसान पहुंचाया.
So much damage in India.
और भारत में तो बहुत ही नुकसान.
We won't even start talking about that.
और उसके बारे में तो हम बात करना शुरू भी नहीं करेंगे.
It's the same in my country.
और ऐसा ही मेरे देश में भी है.
Different sorts of damage, but yes.
तो अलग तरीके के नुकसान हुए लेकिन हुए.
So yes, Buddhism says, let's not be foolish.
तो बुद्ध कहते हैं कि हमें मूर्ख नहीं रहना चाहिए.
So when we talk about doubt, we're not talking about reasonable intellectual doubt.
तो जब हम इस शंका के बारे में कह रहे तो योग्य जो है शंका उसके बारे में हम नहीं कह रहे.
You could say that in Buddhism we sort of encourage even skepticism.
तो skepticism.
Critical thinking.
तो बौद्ध धर्म में no, I don't remember the Hindi word. Skepticism.
It's a critical thinking will do. Yeah.
तो बौद्ध धर्म में तो हम विश्लेषणात्मक सोच को प्रोत्साहन देते हैं.
The Buddha himself was a very critical thinker.
तो बुद्ध स्वयं ही बहुत ही विश्लेषणात्मक चिंतन करते थे.
He criticized everything that he'd inherited from his tradition, from his surroundings.
तो अपनी परंपरा से उन्होंने जो भी लिया था उसे वो चिकित्सक दृष्टि से देखते थे.
And if you read the Pali Canon, it's full of his critical thinking.
तो अगर आप पाली ग्रंथ देखेंगे तो उनकी इस प्रकार की सोच आपको वहां पे मिलेगी.
So that's not a hindrance.
तो ये रुकावट नहीं है.
What's a hindrance is an emotional state of doubt.
तो निवरण क्या है कि आप भावनिक रूप से शंका की स्थिति में हो.
It's an inability to commit yourself.
तो किसी चीज को प्रतिज्ञाबद्ध करने की आप में क्षमता ना होना.
Often it's a fear of failure.
बहुत बार अपयश आने का डर होना.
You're unable to do something because you may not succeed.
तो आप कोई चीज इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि आपको लगता है इसमें मैं असफल हो जाऊंगा.
And this can happen in the midst of meditation.
और ये ध्यान के में भी हो सकता है.
You're trying to do the anapanasati.
आप अनापानसति की कोशिश कर रहे हो.
You're trying to watch your breath.
आप अपनी सांस को देखने की कोशिश कर
But
रहे हो.
All sorts of doubting thoughts are going through your mind.
लेकिन हर तरह के शंका वाले विचार आपके मन में चल रहे हैं.
Maybe this is happening to some of you.
शायद आपके साथ किसी लोगों के साथ ये हो रहा है.
So maybe Subhuti is hypnotizing me.
आप सोच रहे हो शायद Subhuti हमें सम्मोहित कर रहे हैं.
Maybe in a minute he'll say, open your pocket and give me 1,000 rupees.
शायद आपके मन में ऐसा आएगा कि बीच में ये बोलेंगे कि अपनी जेब निकालो बटुआ और उसमें से मुझे 1,000 rupees दे दो.
So you know what I mean, you have that sort of thought that maybe you're being fooled, maybe you're being foolish.
ये आपके मन में ऐसा आ रहा है कि हमें यहाँ बेवकूफ बनाया जा रहा है, हमें मूर्ख समझते हैं.
You have the thought, well, maybe I haven't understood this practice properly.
या आपके मन में ऐसा विचार आता है कि ये जो अभ्यास है ये मुझे ठीक से समझ नहीं आया.
Maybe I can't do it.
या शायद मैं ही इसे कर नहीं पा रहा.
Maybe there's something wrong with me and I can't do it.
हाँ, शायद मेरे में कुछ गलत है और इसलिए मुझसे ये हो नहीं रहा है.
Or maybe I should be doing some other practice.
या शायद मैंने कोई और ध्यान करना चाहिए.
Instead of Anapanasati, I should be doing Maitri Vikas.
और Anapanasati करने के बजाय मैंने मैत्री विकास करना चाहिए.
Or maybe I should go somewhere else where there's a better teacher.
या मैंने किसी ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ कोई अच्छे शिक्षक है.
You know the sort of things that go through your mind which undermine your effort.
और ऐसे जो विचार है आपके मन में चलते रहते हैं जो आपके प्रयत्नों को दबाते जाते हैं.
And some people are very much inclined to this sort of indecision.
और इस तरह की अनिर्णयित अवस्था कुछ लोगों का स्वाभाविक स्वभाव होती है.
Some people don't suffer enough doubt. That's another question.
कुछ कुछ लोगों को पर्याप्त शंका आती ही नहीं.
Some people are too quick to think they know and too quick to decide.
तो कुछ लोगों को तुरंत मालूम होता है मुझे पता है और तुरंत कोई निर्णय ले लेते हैं.
That's more my hindrance than doubt, I have to say.
तो ये मेरे मेरे साथ होता है, मेरी ये शंका है.
But yes, some people they get into this state of indecision and then they can't apply themselves to the practice.
और फिर कुछ लोग इस तरह के अनिर्णयता में चले जाते हैं और फिर वो अपने आप को वो अभ्यास करने में नहीं लगा पाते.
Usually people with quite active intelligence.
और कुछ लोग जो रहते हैं वो जो बौद्धिक रूप में बहुत क्रियाशील होते हैं.
Then it's quite important to study the Dhamma more so that you understand better what you're doing.
तो वो धम्म को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ ये मुझे अच्छे से समझ में आए.
And then you can settle that underlying feeling of doubt.
और फिर जो आपकी ये नीचे जो शंका वाली स्थिति है इसको आप शांत कर सकते हैं.
You can really convince yourself that this is what you should be doing.
तो आप अपने आप को समझाते हो कि ये है जो मैं मैंने करना चाहिए.
So these are the five hindrances.
तो ये पांच निवरण हैं.
And maybe you've recognized one or two of them in your own experience.
और शायद आपके अनुभव में आपने इसमें से एक या ज्यादा को देखा रहेगा.
Maybe you can see a little bit more clearly how you might apply yourself to get rid of them when you're meditating.
शायद आपने ये भी देखा होगा कि अपने ध्यान में आपको क्या करना है कि आप इनसे छुटकारा पा सको.
When you do get rid of them, you experience the true meditative state.
और जब आप इन निवरणों से छुटकारा पा लेते हो तब आप सही ध्यान की अवस्था का अनुभव लेते हो.
It's a state of integration.
और ये एकरूपता की अवस्था है.
It's a state of great mental lightness.
और एक बहुत ही मानसिक हल्केपन की अवस्था है.
It's a state in which you feel a lot of joy.
और ऐसी अवस्था है कि जहाँ बहुत खुशी महसूस करते हो.
Without any reason, you just feel happy.
और कोई वजह नहीं होती है फिर भी आप बहुत खुश महसूस करते हैं.
It's a state in which you feel energy rising within you.
और एक ऐसी अवस्था है कि आप देखते हो कि ऊर्जा आपके अंदर से बह रही है.
You may even feel some rapture.
तो आपको ऐसा भी कुछ प्रीति का अनुभव कि जैसे आपके अंदर से कुछ टूट के बाहर निकल रहा है ऐसा अनुभव.
As energy is released in the mind, it's released in the body.
तो जैसे मन में ऊर्जा प्रवाहित होती है वैसे ही वो जैसे शरीर में ऊर्जा प्रवाहित होती है वैसे ही वो मन में भी होती
And
है.
You feel, yes, a great deal of pleasure.
और आप बहुत ही आनंद का अनुभव लेते हो.
At the same time as you're in this state, there's a little bit of thinking going on.
और जब आप इस अवस्था में होते हो तो थोड़े से सूक्ष्म विचार वहां चल रहे
होते. But the mind has stopped wandering इधर उधर.
लेकिन आपका मन जो है इधर उधर भटकना रुक चुका होता है.
Mind is completely here.
और आपका मन पूरी तरह से यहाँ होता है.
But there's some very gentle reflection going on your experience.
लेकिन आपके अनुभव में एक बहुत ही सौम्य ऐसा चिंतन चल रहा होता है.
That will go eventually.
और थोड़ी देर बाद वो चला भी जाएगा.
As you get deeper into meditation, even that kind of thinking stops.
और जब आप ध्यान में और गहराई में जाते हो तो इस प्रकार के विचार भी रुक जाते हैं.
You're completely awake.
आप पूरी तरह से जागृत होते हो.
You're full of happiness.
आप पूरी तरह से आनंद से भरे होते हो.
Energy is flowing within you.
ऊर्जा आपके अंदर से प्रवाहित होती रहती है.
And your mind is completely clear.
और आपका मन पूरे तरह से स्पष्ट होता है.
So if you can get rid of the hindrances, this is what you will experience.
तो अगर आप इन निवरणों से छुटकारा पाते हो तो आप इस प्रकार का अनुभव ले सकते हो.
It's a state known in Pali as jhana.
और इसी को पाली में एक अवस्था कहते हैं ज्ञान.
Jhana. In Sanskrit it's dhyana.
और संस्कृत में यह ज्ञान है.
Dhyan. The trouble is that you pronounce, pronounce Sanskrit wrongly.
Okay. Sanskrit was not my subject in school.
But it's in modern Hindi, it's how do you pronounce it? Yes, but anyway, it's a state of concentration, which has this technical word dhyana.
तो ये एक एकाग्रता की अवस्था होती है जिसे ध्यान जैसे उन्होंने कहा वो.
Correct. Well done. And it's a very, very pleasurable and enjoyable state.
और ये बहुत ही आनंददायक ऐसी अवस्था होती है.
It's a state of great integration, of course.
और बहुत एकाग्रता की एकरूपता की अवस्था होती है.
State of intense positive emotion.
और बहुत ही तीव्र सकारात्मक अनुभव आते हैं, एहसास आते हैं.
And with that state, it's much easier to see the true nature of things.
और उस अवस्था में कि वस्तु का जो सही स्वरूप है उसे देख पाना आसान होता है.
But first of all, we have to get rid of the hindrances.
लेकिन उससे पहले हमें निवरणों से मुक्त होना होता है.
And you can expect from time to time in your meditation to find the hindrances disappearing. And the beginnings of jhana emerging.
तो जैसे आप ध्यान करते जाओगे तो आप देखोगे कि धीरे धीरे ये निवरण जा रहे हैं और ये ज्ञान की जो अवस्था है वो निर्माण हो रही है.
And some very interesting things then begin to happen.
और बहुत ही फिर रोचक ऐसी चीजें होना शुरू हो जाता है.
But well, you just have to see what they are.
और आपको सिर्फ देखना होता है कि वो क्या है.
So that's enough for now.
तो अभी के लिए इतना पर्याप्त है.
We don't really have much time for a full meditation.
और पूरे ध्यान के लिए अभी हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है.
What tea is at 11:30, is it? It's not ready till 11:30. That's a pity. Because I'd like to do a I think it's probably enough content. Yeah. If you've taken in that'll be quite a lot. But maybe we could break now, get tea quickly, and we could ask them to make it a bit earlier, and come back 11:45. Yeah? 11:45 means 11:45. I've discovered that time moves in different ways.
तो अभी हम मध्यांतर लेते हैं, चाय पियेंगे. और 12:15 बजे हम यहाँ पहुंचेंगे. 12:15 मतलब 12:15.
And we'll do a double meditation again.
और हम ध्यान के दो सत्र करेंगे.
But still, it's good that we've spent the time on these hindrances because, well, it's you need to know them.
लेकिन ये अच्छा है कि हमने इन निवरणों को जानने के लिए समय लिया क्योंकि इन्हें जानना आवश्यक है.
When you know them, you know how to get rid of them.
और जब इन्हें जानते हैं हम तो हमें पता होता है इनसे मुक्त कैसे होना, छुटकारा कैसे पाना है.